एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, ऐसी किताब जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। रैंडल मोनरो की व्हाट इफ, सीरियस साइंटिफिक आंसर्स टू एब्सर्ड हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस।
बिल्कुल, नाम ही काफी है। अजीब सवाल लेकिन जवाब एकदम सीरियस, वो भी साइंटिफिक।
हाँ, वो सवाल जो कभी ना कभी शायद हम सबके दिमाग में आते हैं पर हम पूछते नहीं, जैसे क्या हो अगर धरती अचानक घूमना बंद कर दे,
या अगर आप लाइट की स्पीड के नजदीक फेंकी गई बेसबॉल को हिट करने की कोशिश करें।
सुनने में मजाक लगता है।
लगता तो है, लेकिन आज के जमाने में जहां इन्फॉर्मेशन तो बहुत है पर शायद सवाल पूछने का हौसला कम हो रहा है।
हाँ, वहीं ये किताब जरूरी हो जाती है। ये याद दिलाती है कि जिज्ञासा मतलब कुछ जानने की इच्छा कितनी जरूरी है, और विज्ञान कोई डरावनी चीज नहीं है। सही कहा, बल्कि दुनिया को समझने का एक मजेदार तरीका है ना?
बिल्कुल, एक रोमांचक सफर। तो चलिए पहले इस सफर पर ले जाने वाले के बारे में जानते हैं, रैंडल मनरो।
हाँ, रैंडल मनरो ये कोई टिपिकल लेखक नहीं है, इनका बैकग्राउंड ही बड़ा अनोखा है।
सही, एक तरफ तो फिजिक्स पढ़ी है इन्होंने क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से,
और सिर्फ पढ़ाई नहीं, नासा में काम भी किया है, लैंगली रिसर्च सेंटर में रोबोटिक्स और स्पेस मिशन पर।
सोचिए, रोबोट बनाना, स्पेस के प्रोजेक्ट्स, मतलब फिजिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग, इन सब पर इनकी पकड़ जबरदस्त है।
लेकिन ज्यादातर लोग शायद इन्हें किसी और वजह से जानते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, इनका वो मशहूर वेब कॉमिक्स XKCD।
अरे हाँ, वो स्टिक फिगर वाले कार्टून, कितने सरल दिखते हैं पर बातें कितनी गहरी होती है उनमें।
वही तो, विज्ञान, गणित, प्यार, जिंदगी, सब कुछ, वो भी बड़े मजेदार अंदाज में।
तो मनरो में ये गजब का कॉम्बिनेशन है, एक नासा साइंटिस्ट वाला दिमाग और एक कार्टूनिस्ट वाली कल्पना और हाजिर जवाबी।
और यही चीज व्हाट इफ में दिखती है। ये किताब असल में उनके ब्लॉग का ही एक्सटेंशन है, जहां लोग उन्हें ऐसे ही अजीबोगरीब सवाल भेजते थे
और वो पूरी गंभीरता से उनके जवाब देते थे विज्ञान का इस्तेमाल करके।
हाँ, और उनकी यही खासियत है, वो मुश्किल से मुश्किल चीज जैसे क्वांटम मैकेनिक्स या थर्मोडायनामिक्स, उसको भी ऐसे समझाते हैं कि मजा आ जाए।
तो ये किताब आखिर करती क्या है, मतलब इसका मकसद क्या है?
देखिए, जैसा नाम है व्हाट इफ, ये दुनिया भर के लोगों से आए अजीब, नामुमकिन, कभी कभी तो डरावने से लगने वाले काल्पनिक सवाल उठाती है।
और
फिर रैंडल मनरो पूरी तरह से विज्ञान के सिद्धांतों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणितीय गणनाओं का इस्तेमाल करके उनके जवाब देते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान सिर्फ लैब या क्लासरूम के लिए नहीं है।
बिल्कुल नहीं, मनरो दिखाते हैं कि विज्ञान हमारी जिज्ञासा के लिए, हमारे क्या हो अगर वाले सवालों के लिए एक बेहतरीन खेल का मैदान है।
मतलब आप सबसे बेतुके सवाल पर भी अगर वैज्ञानिक तरीके से सोचें
तो आप दुनिया के बारे में कुछ बहुत ही हैरान करने वाली, अक्सर हंसाने वाली और गहरी बातें जान सकते हैं। ये किताब यही साबित करती है।
ये तो विज्ञान की एक रोलर कोस्टर राइड जैसी लगती है, हर चैप्टर एक नया सवाल, एक नई चुनौती।
हाँ, और सफर हमेशा सीधा नहीं होता, आप एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं और मनरो आपको लॉजिक, कैलकुलेशंस
और कभी कभी एक्सपर्ट्स की मदद से,
हाँ, उसके अंजाम तक ले जाते हैं, और अंजाम वो अक्सर होश उड़ाने वाले होते हैं,
जैसे वो बेसबॉल वाला उदाहरण या पृथ्वी के घूमने वाला।
बिल्कुल, नतीजे कई बार विनाशकारी होते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि हमारी दुनिया, हमारा ब्रह्मांड कितना इंटरकनेक्टेड है, एक चीज बदलने से कितना कुछ बदल सकता है।
और साथ में उनके वो स्टिक फिगर चित्र भी तो हैं।
हाँ, वो तो कमाल है, मुश्किल चीजों को आसान बनाते हैं और सिचुएशन की बेतुकी गंभीरता को और मजेदार।
तो चलिए कुछ सवालों में गोता लगाते हैं, एक वो क्लासिक वाला, क्या हो अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे।
हाँ, सोचिए जरा, पृथ्वी और उस पर सब कुछ, घर, पेड़, पहाड़, सब अचानक रुक जाएं, स्टॉप।
लेकिन हवा, हवा तो चलती रहेगी।
बिल्कुल, मनरो बताते हैं कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी घूमती है करीब 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर जमीन रुक गई तो हवा तो अपनी उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी, जड़ता का नियम, इनर्शिया।
1700 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो किसी भी तूफान से तेज हुई, सुपरसोनिक।
हाँ, एक भयानक सुपरसोनिक हवा का झोंका पूरी पृथ्वी की सतह को साफ कर देगा, इमारतें, पेड़, इंसान, जानवर, मिट्टी की ऊपरी परत, सब उड़ जाएगा।
बाप रे,
सब कुछ,
सब कुछ।
और हवा और जमीन के बीच इतनी जबरदस्त रगड़ होगी कि गर्मी से आग लग जाएगी, ग्लोबल फायर स्टॉर्म।
और भी कुछ?
हाँ, एक और अजीब चीज होगी। पृथ्वी के घूमने से समुद्र का पानी भूमध्य रेखा पर थोड़ा उठा हुआ है। घूमना बंद होते ही ग्रेविटी उसे ध्रुवों की तरफ खींचेगी।
मतलब?
मतलब ध्रुवों पर दो नए विशाल महासागर बन जाएंगे और भूमध्य रेखा के पास जमीन का एक नया टुकड़ा, एक नया महाद्वीप उभर आएगा।
कमाल है। एक सवाल हमें पृथ्वी के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है।
बिल्कुल। अब उस दूसरे मशहूर सवाल पर आते हैं। क्या हो अगर आप प्रकाश की 90% गति से फेंकी गई बेसबॉल को हिट करें?
हाँ, ये तो और भी अजीब है। हिट कर पाएंगे?
मनरो कहते हैं भूल जाइए हिट करना। बैटर, बल्ला, स्टेडियम, ये सब तो पिक्चर में ही नहीं रहेंगे।
मतलब?
असली कहानी शुरू होती है जैसे ही गेंद हाथ से छूटती है। 0.9C यानी प्रकाश की लगभग 90% रफ्तार। इस स्पीड पर हवा के अणु जो गेंद के रास्ते में है,
हाँ,
वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। गेंद इतनी तेज है कि उसके लिए हवा के अणु उस पर लगभग लाइट स्पीड से टकरा रहे हैं।
अच्छा, तो उससे क्या होगा?
उससे होगा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। हवा के अणु आपस में टकराकर जुड़ने लगेंगे, बिल्कुल सूरज के कोर की तरह।
क्या, बेसबॉल से न्यूक्लियर फ्यूजन?
हाँ, अजीब है पर यही फिजिक्स है। गेंद के रास्ते से एक्सरे, गामा रेज निकलेंगी, प्लाज्मा का एक सुपर हॉट बुलबुला बनेगा।
प्लाज्मा?
हाँ, आयन और इलेक्ट्रॉन का बेहद गर्म बादल। ये बुलबुला इतनी तेजी से फैलेगा कि गेंद के होम प्लेट तक पहुंचने से पहले ही वो पिचर, बैटर, पूरा स्टेडियम, सबको भाप बना देगा।
ओ।
पूरा शहर एक आग के गोले में समा जाएगा और बेसबॉल डायमंड की जगह एक बड़ा सा गड्ढा। ये रिलेटिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स का एक डरावना पर शानदार सबक है।
सच में अविश्वसनीय है। ये दिखाता है कि मनरो कैसे विज्ञान की हद्दों तक ले जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ फिजिक्स तक ही नहीं रुकते हैं ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ भी खेलते हैं। जैसे वो सवाल, क्या हो अगर आप 1 मोल छछूंदर जमा करें?
मोल ऑफ मोल्स।
मोल ऑफ मोल्स, ये तो शब्दों का खेल है।
हाँ।
लेकिन ये पैमाने की ताकत दिखाता है। केमिस्ट्री में 1 मोल होता है एवोगैड्रो नंबर, 6 के बाद 23 जीरो, 6×10^23।
इतनी सारी छछूंदरें?
हाँ, मनरो हिसाब लगाते हैं कि इन सब का वजन मिलकर लगभग हमारे चांद जितना हो जाएगा।
क्या बात कर रहे हैं, चांद जितना वजन छछूंदरों का?
जी हाँ, मांस, हड्डी, फर का एक चांद के साइज का गोला। और वो सिर्फ रहेगा नहीं, अंदर का दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि वो एक तरह का ग्रह बन जाएगा। मनरोज की ग्रेविटी, कोर का प्रेशर जो मास का मैग्मा बना देगा, और उसके चारों तरफ उबलती छछूंदर गैसों का भयानक एटमॉस्फियर, सब कैलकुलेट करते हैं।
ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है, पर मजेदार भी।
हाँ, ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग विज्ञान मिलकर कुछ बिल्कुल अनसोचा बना सकते हैं।
अच्छा, एक आखिरी उदाहरण लेते हैं, वो वाला जो हम सबसे जुड़ा है। क्या हो अगर पृथ्वी पर हर इंसान एक साथ कूदे, एवरीबॉडी जंप, क्या धरती हिल जाएगी?
मनरो का कैलकुलेशन दिलचस्प है। पहले तो पूरी मानव आबादी, करीब 8 अरब लोग, एक बहुत छोटे से एरिया जैसे रोड आइलैंड स्टेट में फिट हो सकती है।
अच्छा, फिर
जब सब कूदेंगे तो धरती पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, लेकिन पृथ्वी इतनी ज्यादा भारी है कि ये फोर्स लगभग ना के बराबर है।
मतलब कुछ नहीं होगा।
और जैसे ही सब वापस लैंड करेंगे, मोमेंटम कॉन्जर्वेशन की वजह से वो वापस अपनी जगह आ जाएगी, तो ग्रह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम है इंसानों के लिए। सोचिए, 8 अरब लोग एक छोटी सी जगह में कूदने के बाद क्या होगा? टोटल केओस, ट्रांसपोर्ट बंद, खाना पानी का संकट, भगदड़।
ओ, मतलब ग्रह ठीक रहेगा, हम नहीं।
बिल्कुल, शायद मानवता का आखिरी सेल्फी मोमेंट।
तो इन सब दिमागी कसरतों से, इन अजीब सवालों के जवाबों से हमें असल में सीखने को क्या मिलता है, आपको क्या लगता है?
मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज है वैज्ञानिक सोच का मजा, जॉय ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। मनरो का जो उत्साह है ना, वो बताता है कि सवाल पूछना, सोचना, कैलकुलेट करना, जवाब ढूंढना, ये प्रोसेस ही अपने आप में रिवॉर्डिंग है।
हाँ, विज्ञान सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, ये एक तरीका है सोचने का, एक्सप्लोर करने का।
और दूसरी चीज, अंदाजा लगाने की ताकत, पावर ऑफ एस्टिमेशन, फर्मी प्रॉब्लम्स जिन्हें कहते हैं।
वाह, मतलब जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए सुपर कंप्यूटर ही चाहिए।
सही कहा, बेसिक प्रिंसिपल्स और थोड़ी सी कैलकुलेशन से भी आप दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये हमें चीजों को क्वांटिटेटिव तरीके से देखना सिखाता है।
ये तो बहुत काम की स्किल है। और एक और बात जो बार बार दिखती है, अनपेक्षित नतीजे,
अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस,
है ना?
बिल्कुल। सिस्टम थिंकिंग कि कैसे एक छोटा सा बदलाव भी पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है. जैसे वो बेसबॉल वाला मामला, कहां बेसबॉल और कहां न्यूक्लियर फ्यूजन.
ये दिखाता है कि सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां तक कि सोसाइटी भी.
और ये सब कुछ इतने हल्के फुल्के अंदाज में.
हास्य का इस्तेमाल सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है.
नहीं, वो सिखाने का जरिया है.
हाँ, वो भयानक तबाही का शांत सा जिक्र, वो स्टिक फिगर, ये मुश्किल चीजों को आसान और यादगार बना देता है.
हंसते हंसते सीख जाते हैं.
और आखिर में सबसे जरूरी बात शायद ये है कि जिज्ञासा अपने आप में कीमती है. पूछते रहो, सवाल चाहे कितना भी अजीब लगे.
सही, मनरो की किताब यही कहती है, क्या हो अगर, पूछना बंद मत करो, यही हमें इंसान बनाता है.
किताब में कुछ पंक्तियां भी बहुत सोचने वाली हैं.
हाँ, जैसे वो कहते हैं, किताब की भावना में कोई सवाल बेवकूफी नहीं होता, सवाल पूछना बंद करना शायद हो सकता है. कितनी गहरी बात है.
और वो बेसबॉल वाली तबाइश का वर्णन याद है? प्लाज्मा और हवा का ग्रस्ता बादल फैलता है, बेसबॉल डायमंड अब एक बड़ा गड्ढा है, जिस तरह लिखा है, एकदम ठंडा वैज्ञानिक अंदाजा.
हाँ, उसमें एक अजीब सा ह्यूमर है. और मुझे वो स्पेस वाली बात भी बहुत अच्छी लगी.
कौन सी?
वो कहते हैं कि शायद ब्रह्मांड ऐसी सभ्यताओं की कब्रों से भरा है जिन्होंने समझदारी से सोचा कि अंतरिक्ष में जाना फिजूल है, और उन कब्रों को खोजा उन लोगों ने जिन्होंने ये बेवकूफी की.
वाह, ये तो एक्सप्लोरेशन और बेसिक रिसर्च का कितना बड़ा समर्थन है.
बिल्कुल, कि बड़ी खोजें अक्सर बिना किसी तुरंत फायदे की उम्मीद के ही होती हैं.
और वो सबके कूदने वाले सवाल का अंत. अच्छी खबर, सब ने एक ग्लोबल साइंस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया. बुरी खबर, ये आखिरी था.
डार्क ह्यूमर. फिर वही बात, असली गड़बड़ अक्सर इंसानी पहलू में होती है.
तो क्या इन सब काल्पनिक बातों का असल जिंदगी में भी कोई इस्तेमाल है?
मुझे लगता है बिल्कुल है. सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर करता है.
कैसे?
ये सिखाता है कि बड़ी मुश्किल लगने वाली चीज को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में कैसे तोड़ें, फिर लॉजिक और साइंस से सोचें. ये तरीका तो कहीं भी काम आ सकता है.
हाँ, ये तो है. और वो अंदाजा लगाने वाली बात, क्वांटिटेटिव इंट्यूशन,
फर्मी एस्टिमेशन, रोज की जिंदगी में बहुत काम आता है. बजट बनाने से लेकर किसी खबर को समझने तक चीजों के स्केल का अंदाजा होना.
सही. और रिस्क असेसमेंट के बारे में भी सोचने का नजरिया बदल सकता है.
हाँ, जब आप देखते हैं कि छोटे बदलावों के कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं, तो आप अपने फैसलों के बारे में ज्यादा गहराई से सोचते हैं.
और स्टूडेंट्स के लिए तो ये कमाल की चीज है, स्टेम एजुकेशन को मजेदार बनाने का तरीका.
बिल्कुल, फिजिक्स मैथ्स बोरिंग नहीं, रोमांचक है. देखो इनसे कैसे कैसे सवालों के जवाब मिलते हैं.
और सबसे बढ़कर ये जिज्ञासा को जिंदा रखती है, लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी, दुनिया को देखकर क्या हो अगर पूछने की आदत डालती है, और यही तो इनोवेशन की शुरुआत है.
तो आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा है इस किताब से?
मेरे लिए शायद ये कि विज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, ये सोचने का एक तरीका है, एक टूल है, और अक्सर जवाब तक पहुंचने का रास्ता, वो सफर, खुद जवाब से ज्यादा सिखा जाता है.
हाँ, और मेरे लिए ये कि गंभीरता और मजाक साथ साथ चल सकते हैं. गहरी सोच बोरिंग न हो और मजाक सतही न हो. ये किताब विज्ञान और इंसानी कल्पना का एक शानदार जश्न है, और ये यकीन दिलाती है कि कोई भी सवाल पूछने लायक है.
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब, और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है. ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है.